डॉक्टर डोनाल्ड फाउलर, पुराने नियम की पृष्ठभूमि। व्याख्यान चार, राजाओं का दैवीकरण। 2024 डॉन फाउलर और टेड हिल्डेब्रांट। यह पुराने नियम की पृष्ठभूमि पर अपने शिक्षण में डॉक्टर डॉन फाउलर हैं। यह सत्र चार है, राजाओं का दैवीकरण। खैर, हम मानव अनुभव में युगांतरकारी बदलावों में से एक के बारे में टिप्पणियां दर्ज कर रहे हैं। वह युगांतरकारी बदलाव मंदिरों और पुजारियों जैसी धार्मिक संस्थाओं की केंद्रीयता से दूर राजाओं और महलों जैसी अर्धधार्मिक संस्थाओं की ओर है। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुराने नियम की पृष्ठभूमि सामग्री के रूप में फिट बैठता है और हम कहां जाने वाले हैं। इसलिए मुझे पता है कि अभी ऐसा लग सकता है कि हम बाइबल से बहुत दूर हैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ धैर्य रखेंगे तो इस समय हम जिस दिशा में काम करने जा रहे हैं वह राजाओं के दैवीकरण की अवधारणा है। वह यह कि मेसोपोटामिया में राजा देवता बन गए और फिर उसका परित्याग, और फिर यह सब बुतपरस्त विचारों को समझने के लिए महत्वपूर्ण सामग्री है कि धर्म कैसे काम करता है। और मुझे लगता है कि आपको यह न केवल पुराने नियम की दुनिया को समझने के लिए बल्कि मनुष्य के रूप में हमारे सोचने के तरीके को समझने के लिए बहुत उपयोगी सामग्री मिलेगी। तो वहां पहुंचने में थोड़ा समय है, लेकिन आप जानते हैं, मुझे बस एक मिनट रुकना चाहिए और आपको बताना चाहिए, हमारे पास मौजूद स्पीड अप संस्कृति के बारे में एक चीज जो मेरे जैसे व्यक्ति को पागल कर देती है, वह यह है कि हम हमेशा ऐसे ही रहते हैं कहीं न पहुंचने की जल्दी में। यदि आप नींव बनाने के लिए समय निकालने को तैयार हैं, तो आप एक गगनचुंबी इमारत का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक शेड बनाना चाहते हैं तो बस थोड़ी सी लकड़ी की फर्श की जरूरत है और आप जाने के लिए तैयार हैं। तो हम एक गगनचुंबी इमारत का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए यदि आप मेरे साथ धैर्य रखेंगे तो मुझे लगता है कि हम वहां पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वह किस शहर है, और यही वह शहर है जहां पहली बार राजत्व का अनुभव हुआ था। वास्तव में मेरे पास आपके लिए यह मेरे मानचित्र पर नहीं है, लेकिन यह दक्षिणी मेसोपोटामिया में कर्सर पर कहीं नीचे है, और किश तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व 3000 और उससे अधिक, और दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था, लगभग 2000 और उससे अधिक। तो यहाँ निप्पुर है, और किश निप्पुर से बहुत दूर नहीं था, और इसलिए यह वह शहर है जहाँ बाढ़ के बाद राजत्व को सबसे पहले कम किया गया था, और मैंने आपको पिछले कक्षा के घंटे का उल्लेख किया था। सुमेरियन के राजत्व का पहला भाग हमें लगता है कि राजा सूची सिर्फ पौराणिक है, दूसरे भाग में गैर ऐतिहासिक सामग्री का अपना हिस्सा है, लेकिन राजशाही के बारे में कुछ सबूत हैं जो आश्चर्यजनक रूप से हमें बताते हैं कि राजाओं की इस सूची के दूसरे हिस्से में कुछ ऐतिहासिक मूल्य थे, जिनमें से एक अब तक स्पष्ट है। मेसोपोटामिया में एक शाही महल का उदाहरण किस शहर में पाया गया है? यह इस तथ्य को देखते हुए दिलचस्प है कि सुमेरियन राजा सूची में कहा गया है कि राजत्व का अनुभव सबसे पहले यहीं हुआ था। दूसरे शाही शिलालेखों में हमेशा कीश के राजा की उपाधि को सांसारिक उपाधियों में सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है। अब लोकतंत्र में हम आम तौर पर शाही उपाधियों के बारे में नहीं जानते हैं, और आश्चर्यजनक रूप से वे पुराने नियम में मौजूद हैं। भगवान के पास वजूतक की शाही उपाधियां हैं। एक पुरानी आयोवा कहावत है कि मैंने आयोवा में 3 साल की सेवकाई के दौरान ये उपाधियां प्राप्त की। आप उसे भूल सकते हैं। आपको वजू को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यह कहना चाहता था कि बाइबल में भगवान एक शाही व्यक्ति हैं। हम उसके बारे में ऐसा सोचते हैं जैसे कि ग्रीक शब्दों में वह एक अशरीरी प्राणी है जो अभी स्वर्ग में है, लेकिन बाइबल में उसे हर जगह एक राजा के रूप में चित्रित किया गया है। हम भाषा ही नहीं पहचानते, इसलिए एक राजा के रूप में उनके पास सभी प्रकार की शाही उपाधियां हैं। बाइबल में सभी राजाओं के राजा जैसी शाही उपाधियां हैं। यह एक शाही उपाधि है, और इसलिए किसके राजा की उपाधि यह है कि उसके पास इनमें से 30 या 40 उपाधियां हो सकती हैं, जो उसके व्यक्तित्व के चारों ओर ढेर हो गई हैं। और इसलिए किसका राजा एक शाही उपाधि है, तब भी जब वह किसका राजा नहीं था। यदि वह बेबीलोन का राजा होता, तो वह अपने लिए किसके राजा की उपाधि का दावा करने का प्रयास कर सकता था, क्योंकि यह बहुत प्रतिष्ठित था। तो यह प्रारंभिक राजाओं की शाही उपाधियों में सबसे प्रभावशाली थी। तीसरा, और यह मैं समझा नहीं सकता, और यदि आप इसे नहीं समझ पाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ दक्षिणी मेसोपोटामिया में एक वर्ग है। इस चौराहे को राजधानी जिला कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन सुमेर की अधिकांश शाही राजधानियां इसी क्षेत्र में थीं, जो यहाँ निचले हिस्से में है। इनमें उरुक, उर, निप्पुर, वारका और कुछ अन्य शहर शामिल हैं। किश यही नीचे इस क्षेत्र में है, जिसे हम राजधानी जिला कहते हैं। तो हम केवल यह तर्क दे रहे हैं कि किश शाही राजधानी बनने के लिए सही जगह होगी। अंत में सुमेरियन राजा सूची में जिन राजाओं का उल्लेख किया गया है, उनमें से कई ऐसे व्यक्ति हैं जो स्पष्ट रूप से वास्तव में अस्तित्व में थे, जिनमें से एक एनमेबारगेसी था, जिसका उल्लेख सुमेरियन राजा सूची में किश के राजा के रूप में किया गया है। हमें वास्तव में किश के अभिलेखागार में इस राजा का एक शिलालेख मिला है। वह अस्तित्व में था। दूसरे, आप में से कई लोगों ने जिसके बारे में सुना है, भले ही आप उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हों, वह गिलगमेश है। कुछ शिलालेखों में गिलगमेश को स्वयं उर के राजा के रूप में सूचीबद्ध पाया गया है। अब यह सार्वभौमिक रूप से माना जाता है कि गिलगमेश एक वास्तविक व्यक्ति था। वह स्पष्टतः एक महान प्रतिभा का राजा था, और क्योंकि वह इतना महान राजा था, वह पौराणिक रूप में उस छवि में बदल गया जिसे अब हम गिलगमेश पौराणिक व्यक्ति के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, यह सब हमें जो बता रहा है वह यह है कि कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि किश वास्तव में राजत्व के विषय क्षेत्र के लिए एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण शहर था। और जैसे ही हम इसे छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, मैं सुमेरियन राजा सूची के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया है, उसके मूल्य के बारे में 3 टिप्पणियां करने जा रहा हूँ। एक तो यह कि यह इतिहास लेखन का सबसे प्रारंभिक रूप है। इससे हमारा तात्पर्य यह है कि इतिहास लेखन इतिहास से भिन्न है, क्योंकि इतिहास लेखन यह बताने के लिए आरक्षित शब्द है कि आप इतिहास कैसे लिखते हैं। जिस तरह से हम अमेरिका में इतिहास लिखते हैं, वह बहुत ही निश्चित है। यह विस्तृत तथ्य है। इसे पूरी तरह से निष्पक्ष रूप में प्रस्तुत किया गया है, और निःसंदेह यह धर्मनिरपेक्ष है। खैर, हम इसी तरह इतिहास रचते हैं। सुमेरियन राजाओं की सूची हमें बताती है कि उन्होंने इतिहास कैसे रचा, और इसलिए इस बारे में जो चीजें हम देखते हैं, उनमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह यह है कि सबसे प्रारंभिक इतिहास लेखन, यानी जिस तरह से उन्होंने मेसोपोटामिया में इतिहास लिखा था, वह राजत्व के आसपास केंद्रित था। इसलिए जैसा कि मैं उसके लिए जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं, जो मुझे लगता है कि हमारे पूरे सेमेस्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, मैं आपके लिए राजत्व के विकास का पता लगा रहा हूं। और इसलिए जो हम देखते हैं, वह सबसे शुरुआती दस्तावेज हैं जो हमारे पास उनकी प्राथमिक चिंता राजत्व के रूप में हैं। मैं सोचता हूं कि यदि आप मेरे साथ धैर्य रख सकें, तो मैं इसे उत्पत्ति की पुस्तक में भी आपको दिखा सकता हूं। तो यह एक बात है। दूसरी बात जो वास्तव में दिलचस्प और प्रतिकूल है, वह यह है कि यह प्रारंभिक इतिहास लेखन बड़े पैमाने पर खतरनाक शब्द वंशावली में दर्ज है। यहां तक कि मुझे वंशावली भी पसंद नहीं है। कोई भी वंशावली पढ़ता है और आश्चर्य करता है कि यह यहां क्यों है। खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरह से पूर्वजों ने इतिहास लिखने के बारे में सोचा था, उसमें वंशावली ही इतिहास को संरक्षित करने का प्राथमिक तरीका था। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वंशावली बड़े पैमाने पर मौखिक रूप से मौजूद थीं और इसलिए उन्हें याद किया जा सकता था। लेकिन वास्तव में यह उत्पत्ति की पुस्तक का समर्थन करता प्रतीत होता है, जहां उत्पत्ति 5 और उत्पत्ति 10 में हमारे पास वंशावली में संहिताबद्ध भगवान की ऐतिहासिक सामग्री का रिकॉर्ड है। मुझे लगता है कि यह वही पद्धति है, शायद एक समान नहीं, लेकिन यह वही पद्धति है जो हमारे पास उत्पत्ति 5 और 10 में है, जैसा कि हमारे पास मेसोपोटामिया में है। मैं यहां तक कह सकता हूं कि इसकी जड़ें राजत्व में हो सकती हैं, क्योंकि अधिकांश पुराने नियम के लोग, आज ईसाई धर्म के पुराने नियम के लोग, यह तर्क देंगे कि आदम और हव्वा भगवान की योजना में पहले राजा और रानी थे। जब हम उत्पत्ति 1 और 2 को देखते हैं, तो हम उस भाषा को देखते हैं जिसका उपयोग किया गया है। यह शाही भाषा है। तो ऐसा हो सकता है कि 5 और 10 में वंशावली का कारण आंशिक रूप से शाही वंश को संरक्षित करना हो सकता है, जो वास्तव में पहले राजा और रानी आदम और हव्वा तक जाता है। तो फिर हम आगे चलकर इस बारे में बात कर सकते हैं। मेरी बात वंशावली पर थी। आलोचनात्मक विचार में वंशावली इस बात का संकेत है कि कुछ पुराने नियम के काल के उत्तरार्ध का है, जबकि वास्तव में मेसोपोटामिया में वंशावली प्रारंभिक इतिहास लेखन में फिट होती है। यह सुमेरियों और अश्शूरियों दोनों के लिए सच है। दोनों के पास राजा की सूची है जो हजारों वर्षों तक फैली हुई है। इसलिए यह एक अपेक्षाकृत उपयोगी विचार है जब हमें एहसास होता है कि हमारा पुराना नियम प्राचीन लोगों के विचार के साथ अच्छी तरह से फिट बैठता है। तीसरी बात यह है कि सुमेरियन राजा सूची से पूर्वजों की ऐतिहासिक जानकारी को लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक संरक्षित करने की क्षमता का पता चलता है। बाइबल के एक छात्र के रूप में मेरा विचार है कि ठीक है, यदि मेसोपोटामिया के लोग ऐसा कर सकते हैं, जो कोई भी हमें यह बताने के लिए जिम्मेदार था कि उत्पत्ति 5 और 10 में वे वंशावली कहां से आईं, तो वे ऐतिहासिक सामग्री को संरक्षित करने में सक्षम हो सकते हैं, जैसा कि सुमेरियों और अश्शूरियों ने किया था। तो सुमेरियन राजा सूची कुछ प्रारंभिक तरीकों से हमारी सोच में राजत्व के उभरते महत्व को समझने के लिए मंच तैयार करती है। तो इसके साथ मैं आगे बढ़ने की कोशिश करने जा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि मैं आपके उद्देश्यों के लिए यहां थोड़ा धीमा चल रहा हूं। तो हम जिस ओर बढ़ रहे हैं वह आंशिक रूप से पहला महान साम्राज्य है। तो लगश के राजवंश के अलावा, लगश के राजवंश तक किसी भी वास्तविक प्रकार का इतिहास संभव नहीं है। लगश एक नहर द्वारा टाइग्रिस और यूफ्रेट से जुड़ा हुआ था। यह एकमात्र स्थान था जहां शासकों की अपेक्षाकृत लंबी श्रृंखला के लिए विस्तृत शिलालेख थे, और यह एकमात्र स्थान था जहां राज्य का अध्ययन करने के लिए आर्थिक अभिलेखागार काफी लंबे, काफी बड़े थे। उर नन्नशे इस राजवंश का संस्थापक है। उसके शासनकाल की विशेषता यह है कि राजा यही करते हैं, वे लड़ाई लड़ते हैं। आपको 1 शमूएल 8 याद होगा, जब इसराइलियों ने अन्य सभी राष्ट्रों की तरह एक राजा की मांग की थी। आपको याद होगा कि वे किसी ऐसे व्यक्ति की मांग कर रहे थे जो उनकी ओर से लड़ सके, और इसलिए पानी के अधिकार को लेकर उर नन्नशे का उमा शहर के साथ लगातार संघर्ष चल रहा है। ऐसे कई निम्नलिखित राजा हैं जिनका महत्व कम है। वैसे यहां सबसे पुराने रथ की तस्वीर है। यह बिल्कुल दुर्जेय नहीं दिखता है ना? यह लकड़ी के पहियों वाला एक छोटा उपकरण है जिसे कुछ घोड़े खींचते हैं, लेकिन यह 2500 ईसा पूर्व में एक आतंकवादी हथियार रहा होगा और इसलिए यह सबसे पुराने रथ की तस्वीर है। यह उर्का शाही मानक है जो ऊपर है। इसके नीचे रथ का चित्र है और यहां पहले फालानक्स की एक तस्वीर है। लोगों को लगता है कि फालानक्स का आविष्कार सिकंदर महान या मैसेडोनियाई लोगों ने किया था। वास्तव में उर के प्राचीन निवासी, जैसा कि आप बता सकते हैं, सभी सैनिक यहां पंक्तिबद्ध हैं। यहां शीर्ष पर उनके हेलमेट हैं, यहां उनकी ढालें हैं और यहां उनके भाले हैं, और वे लड़ाई लड़ने के लिए सामूहिक रूप से पंक्तिबद्ध हैं। तो एक बार फिर राजा की सबसे पवित्र जिम्मेदारियों में से एक, मैं इस शब्द का उपयोग करूंगा, दोस्तों, राजा की सबसे पवित्र जिम्मेदारियों में से एक है अपने लोगों की ओर से लड़ना, और हम इसे रिकॉर्ड में बहुत पहले ही स्थापित होते हुए देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण राजा एकोनिटम था, जो एक जोरदार प्रचारक था और एलाम के खिलाफ सफलतापूर्वक युद्ध लड़ रहा था। एलाम दक्षिणी ईरान में है। वह सुमेर पर एक निश्चित आधिपत्य बनाने का प्रबंधन करता है। ठीक है, पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं किया है। सुमेर शहर राज्यों का एक क्षेत्र है और जब तक यह व्यक्ति यहां नहीं आया तब तक वे एकजुट नहीं थे। उसने सुमेर पर यह आधिपत्य स्थापित किया, लेकिन वह अपने गिद्धों के समूह के लिए सबसे प्रसिद्ध है, जिसने उमा पर अपनी जीत का जश्न मनाया था। यह सबसे शुरुआती संधि प्रारूपों में से एक है, जिसमें लंबी शर्तों की विशेषता होती है, जिसके बाद शर्तों का उल्लंघन होने पर शाप दिया जाता है। फिर से देखिए, मैं समझता हूं कि आपके लिए इसका कोई मतलब नहीं है, सिवाय इसके कि भगवान ने इसराइल के साथ अपनी संधि इसी तरह की थी। संधि की विशेषता शर्तों से है। वह क्या है? ये व्यक्तिगत आज्ञाएं, कानूनी आज्ञाएं और शर्तें पूरी न होने पर श्राप हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब मूसा ने हमें कानून दिया तो यह एक संधि प्रारूप था जो पहले से ही 1500 साल पुराना था। ठीक है, तो शायद सबसे दिलचस्प राजा जिसके बारे में हमने बात की है वह आने वाला उरुखग्ना है। वह प्राचीन निकट पूर्व के अधिक दिलचस्प राजाओं में से एक है और उसे सार्वभौमिक रूप से सुधारित राजा कहा जाता है। उसने नगर देवताओं पर राजा के विशेषाधिकारों को सीमित करने का प्रयास किया। अब मैं बस इस पर जल्दी करने जा रहा हूं क्योंकि मैं उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें हम सभी रुचि रखते हैं। इसका मतलब यह है कि राजत्व ने इतनी शक्ति विकसित कर ली है कि इन प्राचीन सुमेरियन शहरों में एक झटका, एक धक्का लग गया है और उरुखग्नाह ने उस अतीत की ओर लौटने की कोशिश की जो अतीत का आदर्श था जब राजाओं के पास इतनी शक्ति नहीं थी। अपने युग के रोनाल्ड रीगन की तरह लगता है। वह अधिक दिलचस्प राजाओं में से एक है। उसने शहर के देवताओं पर राजा की शक्ति को सीमित करने की कोशिश की, यानी उसने मंदिर को महल के बराबर स्तर पर वापस लाने की कोशिश की। दूसरे, उन्होंने राज्य और नौकरशाही की शक्तियों को सीमित करने के साथ साथ करों को भी सीमित करने का प्रयास किया। सत्ता के विकेंद्रीकरण के ये प्रयास स्पष्ट रूप से इस युग में हर चीज के चलन के साथ तनाव में थे। यह हंस क्रिश्चियन एंडरसन के तटबंध में अपनी उंगली डालने जैसा है, जब तटबंध से पहले से ही एक नदी बह रही हो। इससे चीजें रुकने वाली नहीं हैं। तीसरा, उन्होंने ऋणों के सीमित उन्मूलन की स्थापना की, शायद तथाकथित बाइबल जयंती की शुरुआत, और हम इसके बारे में बाद में विस्तार से बात करेंगे। यह पाठ्यक्रम के मेरे सबसे पसंदीदा हिस्सों में से एक है, प्रसिद्ध जयंती, जब भगवान ने हर 7 साल में ऋणों को रद्द कर दिया था। उरुखग्नाह के समय तक चला होगा, जो ऐसा करने वाले पहले राजा थे। जाहिरा तौर पर उनके सुधार के साथ साथ उनका सुधार भी विफल हो गया, ऐसा लगता है कि उन्होंने सुमेर को उसके पुराने शहर राज्य प्रारूप में वापस लाने का प्रयास किया था और वह विफल रहा, लेकिन यह उससे कहीं अधिक था। उन्होंने लुप्त हो रही संस्कृति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए, सुमेरियों के पास वास्तव में एक दिलचस्प अभ्यास था। जबकि सेमाइट्स, जिनके इबरी वंशज हैं, सुमेरियों ने सेमाइट्स की तरह बहुविवाह का अभ्यास नहीं किया, वे बहुपतित्व का अभ्यास करते थे। धनवान महिलाओं के कई पति हो सकते हैं। खैर, वह अपने सुधारों में यह बताने की कोशिश करता है कि वह सुमेर को उस अभ्यास में लौटा रहा था। इस प्रकार उन्हें एक सुधार राजा कहा जाता है, क्योंकि वह उन्हें सुधार कर वापस वहीं ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां वे थे, लेकिन उनके क्षितिज पर कुछ इस तरह मंडरा रहा है कि हम सभी का जीवन कैसा है। जो चीजें आप नहीं जानते थे वे आ रही थीं। सुधार के उनके प्रयासों को बढ़ती संख्या के कारण विफल कर दिया गया था, और वह पुराने नियम की सभी पृष्ठभूमियों में मेरे पसंदीदा नामों में से एक है, लुगल ज़गेसी। लुगल ज़गेसी उमा का राजा था, और आमतौर पर उमा इन युद्धों में लगश से हार रही थी, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से लगश को हरा दिया, और फिर लुगल ज़गेसी ने पूरे सुमेर पर कब्जा कर लिया और एक स्पष्ट प्रामाणिक साम्राज्य बनाया। सुमेर, उन्होंने उरुक शहर को अपनी राजधानी घोषित किया। लुगल ज़गेसी ने हमें साहित्यिक शैली में पहला शाही सुमेरियन शिलालेख दिया है। वह कुछ ऐसा करने वाला पहला राजा भी है जो यह संकेत देता है कि एक महत्वपूर्ण कारक क्या है। एक महान फिल्म निर्माता थे जिन्होंने दो पीढ़ी पहले अमेरिकियों को डरा दिया था, अल्फ्रेड हिचकॉक। बहुत ज्यादा हिंसा नहीं थी, लेकिन उसने ऐसा पूर्वाभास के साथ किया ताकि या तो संगीत के जरिए या स्क्रीन पर होने वाली छोटी छोटी चीजों के जरिए वह आपके अंदर डर के स्तर को बढ़ा रहा था ताकि आप जान सकें कि कुछ होने वाला है। खैर, यह एक पूर्वाभास है। जब लुगल ज़गेसी ने इन सुमेरियन शहरों पर कब्जा कर लिया तो उसने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में गूंजेगा। उसने शहर के देवताओं की उपाधियां अपने लिए हड़प ली। अब जल्दी से मैं आपको बता सकता हूं कि प्राचीन सुमेरियन विचार में प्रत्येक शहर का असली राजा उस शहर का संरक्षक देवता होता था। वह संरक्षक देवता राजा था। उसकी अपनी शाही उपाधियां, अपना महल, अपने नौकर चाकर और अपनी सेना थी। वह एक राजा था। लेकिन जब लुगल ज़गेसी ने इन शहरों पर कब्जा कर लिया तो उसने उन राजाओं की शाही उपाधियां ले ली और उन्हें अपने लिए विनियोजित कर लिया। मैं आपको जो सुझाव दे रहा हूं वह यह है कि इतिहास में जो हो रहा है वह सत्ता का केंद्रीकरण है, जो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि राजाओं का विभाजन नहीं हो जाता, और इसके सभी प्रकार के निहितार्थ हैं। तो लुगल ज़गेसी ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति हैं। अच्छा, ठीक है, तो मैं आपको यहां ले जा रहा हूं। तो उरुकागिना उस छोटी मछली की तरह है जिसे बड़ी मछली निगल जाती है। बड़ी मछली लुगल ज़गेसी है। खैर, एक बहुत बड़ी मछली है जो लुगल ज़गेसी और पूरे सुमेर और पूरे मेसोपोटामिया को निगलने वाली है, और वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक वह भूमध्य सागर में अपनी तलवार नहीं डुबा देती, और उसका नाम सरगोन है, उनमें से एक सभी प्राचीन निकट पूर्वी लोगों में सबसे दिलचस्प। वह हमें एक ऐसे काल से परिचित कराता है जिसे पुराना अक्काडियन काल कहा जाता है। सरगोन, वैसे आप यहां सावधान रहना चाहते हैं दोस्तों, आप में से जो लोग अपना पुराना नियम पढ़ते हैं, आपको याद होगा कि पुराने नियम में एक सारगोन है, लेकिन वह वही सारगोन नहीं है। सरगोन एक असीरियन राजा है जिसका काल लगभग 700 ईसा पूर्व का है। यह सरगोन एक अक्कादियन राजा है जिसका काल लगभग 2350 ईसा पूर्व था। सरगोन नाम का मतलब सच्चा या सिर्फ राजा होता है। ठीक है, बस एक पल के लिए मेरे हास्य का थोड़ा आनंद लीजिए। वह स्वयं को सच्चा राजा कहता था क्योंकि वह एक सूदखोर था। वह सच्चा राजा नहीं था। वास्तव में उन्होंने अपना जीवन एक राजा या राजकुमार के रूप में नहीं शुरू किया। उन्होंने अपना जीवन एक अज्ञात शिशु के रूप में शुरू किया जो टाइग्रिस नदी में बह गया था। अब यहां वह हमें अपने सारगोन मिथक में बताता है। वह हमें बताता है कि उसके पिता एक अज्ञात किसान थे और उसकी मां एक मंदिर की वेश्या थी। वह हमें बताता है कि जब वह पैदा हुआ था तो उसकी मां ने, चूंकि वह एक मंदिर की वेश्या थी, उसे टाइग्रिस नदी पर बहा दिया था। वहां एक छोटी सी नाव में वह नीचे की ओर तैरता है और वह किश नामक स्थान पर उतरता है। वहां उसे नदी के तट पर देखा गया और एक शाही व्यक्ति, एक महिला शाही व्यक्ति द्वारा उसे शाही महल में ले जाया गया और शाही घर में पाला गया। उसके पास शाही खून नहीं है, लेकिन उसका पालन पोषण शाही महल में हुआ है। अब कभी कभी छात्र, जब मैं यह पढ़ा रहा होता हूं, तो वे तुरंत कहने लगते हैं, एक मिनट रुकिए, यह मूसा की तरह लगता है। खैर, सबसे पहले समानताएं हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। मूसा के एक पिता थे और उसकी एक मां थी, और उसकी मां ने उसे नदी देवता को बलि चढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उसका जीवन बचाने के लिए नील नदी पर डाल दिया था। लगभग निश्चित रूप से सरगोन की मां ने उसे नदी देवता को बलि चढ़ाने के लिए छोटी नाव में रखा था। दूसरे, नील बहुत धीमी गति से बहने वाली नदी है। नूह जिस छोटे चाप में था वह कई दिनों तक तैर सकता था। टाइग्रिस एक बहुत तेज बहने वाली नदी है और इसने नाव को अपेक्षाकृत तेजी से पलट दिया होगा। निःसंदेह, जबकि मूसा का पालन पोषण शाही दरबार में हुआ था, मूसा को राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, कम से कम मिस्र का तो नहीं। कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक मां वेश्या है और दूसरी मूसा की मां एक अच्छी इसराइली है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई वास्तविक समानताएं हैं। और इसके अलावा कुछ विद्वानों की तरह मुझे भी संदेह है कि कहानी में कोई सच्चाई है। राजा जानते थे कि उन्हें स्वीकार्य बनाने के लिए अपनी कहानियां गढ़ना महत्वपूर्ण था, और इसलिए उनकी दुनिया के धर्मशास्त्र में उनके कहने के अनुसार मेरी मां एक धार्मिक व्यक्ति थी, हम एक वेश्या के बारे में विशेष रूप से नकारात्मक शब्दों में सोचते हैं, लेकिन उनकी मां एक धार्मिक व्यक्ति थी, और इसलिए उनकी उत्पत्ति एक मंदिर में एक मां के साथ हुई जो एक पुजारी थी। उन्होंने उन्हें एक नाव में बिठाया और उनकी जान बचाई। यह कहने के लिए प्रचार के रूप में कार्य करता है कि देवताओं ने मुझे सीधे किस शहर तक निर्देशित किया जो मेसोपोटामिया का सबसे महत्वपूर्ण शाही शहर है, और फिर यह कहना कि उन परिस्थितियों के बाद उनका पालन पोषण शाही महल में हुआ था। यह सब यह समझाने के लिए महज मनगढ़ंत बातें हो सकती हैं कि वह अवैध होने के कारण राजा कैसे बने, यह सच नहीं है। तो किसी भी दर पर यह दिलचस्प आंकड़ा हमें पहला विश्व साम्राज्य देता है, और वह हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जिसके आगमन की गूंज सीधे पुराने नियम के पन्नों में सुनाई देगी। इसलिए उसने 56 वर्षों तक शासन किया, जिससे वह पूरे मेसोपोटामिया में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले राजाओं में से एक बन गया। और यहां इस आकर्षक आंकड़े के बारे में कुछ कारक दिए गए हैं। वह इतिहास में मेसोपोटामिया साम्राज्य रखने वाले पहले व्यक्ति थे। इसमें वह सब शामिल है जिसे हम इराक कहते हैं, और शायद वह भी जिसे हम सीरिया कहते हैं। यदि आपके पास एक साम्राज्य है मित्रों, यदि आपके पास एक साम्राज्य है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लोगों को उसमें रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यदि आपके पास एक राज्य है तो आप उनके राजा हैं, और संभावना यह है कि वे चाहते हैं कि आप उनके राजा बने। यदि आपके पास एक साम्राज्य है तो आप पकड़े गए लोगों पर शासन कर रहे हैं, और जरूरी नहीं कि वे इसे पसंद करें, खासकर क्योंकि सरगोन एक सेमिट था और वह सुमेरियों पर शासन करने जा रहा था। ये दो अलग अलग लोग हैं। यदि आप दो अलग अलग समूहों जैसे अमेरिकी और चीनी के बारे में सोचें, तो आपके पास एक अस्पष्ट संदर्भ होगा कि ये लोग कितने अलग थे। सुमेरियन और अक्कादियन ऐसी भाषाएं हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। वे दो अलग संस्कृतियां हैं। अब वे मौलिक रूप से भिन्न नहीं हैं, लेकिन वे भिन्न हैं। तो उसके कारण उसे राज्य को कार्यान्वित करने के तरीकों का पता लगाना पड़ा। इसलिए वह शहरों पर छावनी बनाने का विचार लाने वाला पहला राजा था। दक्षिण में इन सुमेरियन शहरों में से प्रत्येक में उसने जो किया वह यह था कि उसके पास सैन्य टुकड़ियां थीं। वह 5400 के विशेष समूह के बारे में बात करते हैं। ये शायद उसके सबसे वफादार सैनिकों का समूह है जिसका उपयोग उसने इन शहरों की घेराबंदी के लिए किया था, और इसका मतलब यह था कि उसके पास हर शहर में एक सैन्य बल था जो यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सुमेरियन शहर पर नजर रखता था कि वे विद्रोह न करें। तीसरा, एक साम्राज्य बनाने के लिए उन्होंने सेमिटिक अधिकारियों को नियुक्त किया, और इसलिए उन्होंने सेमिटिक अधिकारियों को नियुक्त करने में जो किया वह यह था कि उन्होंने सुमेरियन प्रशासनिक आंकड़ों को जगह देने की अनुमति दी, लेकिन उनके ठीक बगल में उन्होंने एक सेमिटिक समकक्ष नियुक्त किया ताकि आपके पास दोनों हो, एक सुमेरियन और एक सेमिटिक मूलतः एक ही काम कर रहे हैं। अंतिम, और ये ऐसी तकनीकें हैं जिनकी लगभग सभी बाद के साम्राज्यों ने नकल की, अंतिम वह राजनीतिक बंधकों को लेकर शासन करने वाले पहले राजा थे। इसलिए उसने इन महत्वपूर्ण सुमेरियन शहरों में से प्रत्येक में शाही परिवार से बंधकों को लिया, उन्हें अपनी राजधानी शहर में लाया, और फिर उनका उपयोग यह गारंटी देने के लिए किया कि सुमेरियन अधिकारी विद्रोह नहीं करेंगे क्योंकि उनके बेटे सरगोन के साथ कैद में थे। किश में ये वाकई शानदार हैं। कोई नहीं जानता कि सरगोन ने इन विचारों की कल्पना की थी या उसके पास सलाहकार थे। सरगोन से पहले किसी और ने ऐसा नहीं किया, इसलिए ये वास्तव में शानदार रूपांकन हैं। दूसरा, मैं इन्हें राजनीतिक मिसाल कहता हूं। यह सर्वोत्तम शब्दावली नहीं है। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हम राजनीति और धर्म को दो अलग अलग चीजें मानते हैं। हकीकत में मैं इन्हें उतनी ही आसानी से धार्मिक राजनीतिक मिसाल कह सकता था। यह काल पहला है जिसे शाही कहा जा सकता है। राजघराने के हित अब सर्वोपरि हैं। सरगोन जो करता है वह यह बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि राज्य में सब कुछ राजा और उसके महल के अधीन है। मुझे उसे दोहराने दीजिए। यह एक साम्राज्य है जो भूमध्य सागर से फारस की खाड़ी तक फैला हुआ है। सरगोन ने यह स्पष्ट कर दिया कि राजा के रूप में राज्य में सब कुछ उसके और उसके शाही महल के अधीन था। अब यह महज एक दुर्घटना हो सकती है, लेकिन बाइबल में याद दिलाया जाना चाहिए कि डेविड ने मंदिर बनाने या बनाने की कोशिश करने से पहले यरूशलेम को अपना महल शहर बनाने के लिए जीतने का ध्यान रखा था। और स्मरण रहे कि जब सुलेमान राजा बना तो सुलेमान ने सबसे पहले अपना महल बनवाया। दूसरी चीज जो उसने बनवाई वह था मंदिर। याद रखें कि सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर की तुलना में अपने महल में कहीं अधिक समय बिताया था। ये सभी केवल सुझाव हैं जो हमें बताते हैं कि एक सच्चे शाही काल में सब कुछ राजा और महल के अधीन होता है। तो इसका मतलब है शाही उपाधि में बदला। जबकि सरगोन से पहले किश का राजा सभी शाही उपाधियों में सबसे अधिक मूल्यवान था, अब नए उभरते राज्य साम्राज्य में पसंदीदा उपाधि अगाड़े भूमि का राजा है, जो धीरे धीरे अपने लिए भगवान की उपाधियों को हड़प रहा है। छोटा लेकिन महत्वपूर्ण दूसरे कर। अतीत में कर लगते थे, लेकिन कर सभी स्थानीय लोगों को जाते थे, शहर की दीवारों के भीतर सब कुछ। अब कर आंशिक रूप से स्थानीय शहर का समर्थन करने के लिए, लेकिन आंशिक रूप से स्थायी सेना और कब्जे वाली ताकतों का समर्थन करने के लिए लगाए जाते हैं। सरगोन ने जो किया वह यह था कि उसने एक स्थायी सेना बनाई और फिर उसने स्थानीय करों के माध्यम से इसके लिए भुगतान किया। तीसरा, नौकरशाही। प्रारंभिक राजवंशीय काल में नौकरशाही कार्यात्मक और स्थानीय थी। हम इसे शहर राज्य नौकरशाही कह सकते हैं। अब सरगोन परिवार के माध्यम से, शाही परिवार के माध्यम से शासन करता है। वह नौकरों को भूमि अनुदान के रूप में भुगतान करता है और वह सारी भूमि का मालिक है। यह सभी परंपराओं से बिल्कुल नाटकीय बदलाव है। सरगोन जो करता है वह वस्तुतः सब कुछ अपने और शाही महल के अधीन कर देता है। जब मैं आपसे कहता हूं कि उन्होंने अपनी बेटी को महायाजक के रूप में स्थापित किया, तो इसका मतलब यह है कि पहली बार राजा की शाही बेटी पूरे देश में प्रमुख धार्मिक व्यक्ति के रूप में कार्य करती है। यह सिर्फ स्मारकीय है। सरगोन ने यह सब विध्वंसक अंदाज में किया। तो यहाँ एक त्वरित सारांश दिया गया है कि आधुनिक संदर्भ में किसी देश के राष्ट्रपति कैसे तानाशाह बन सकते हैं। सरगोन ने जो किया उसने पूरी सरकारी व्यवस्था को चौंका दिया। और इससे मेरा तात्पर्य यह है कि उनसे पहले मंदिर अभी भी काफी प्रभावशाली था और सभी केंद्रीय धार्मिक व्यक्ति मंदिर द्वारा नियुक्त किए जाते थे। सरगोन ने जो किया वह यह था कि उसने सभी धार्मिक कार्यालयों को किसी तरह अपने आप में केंद्रीकृत कर लिया और फिर इसके लिए दैवीय औचित्य का दावा करते हुए बताया कि उसका कोई भी अधिग्रहण देवताओं की शक्ति के बिना नहीं हो सकता था। यह बात उनके कानों में पड़ी क्योंकि उन्होंने एक शक्तिशाली तरीके से उस सत्य का उपयोग किया जिस पर हर कोई विश्वास करता था, आप केवल देवताओं की शक्ति के माध्यम से ही सफल हो सकते हैं। तो सरगोन ने जो कहा वह था, मैंने जीत लिया, मैंने पूरी दुनिया जीत ली। मैं देवताओं की मदद के बिना ऐसा नहीं कर सकता था और इसलिए इन सभी परिवर्तनों में वे मेरे पीछे हैं। खैर, यह कुछ ऐसा है, चाहे विश्वास करें या न करें, यह हमारी बाइबल में एक और दो राजाओं के पन्नों पर मौजूद है। तो हम आपको दिखा सकते हैं कि यह सब कैसे चलता है। तो उन्होंने भी वही किया जो बड़े बड़े राजाओं ने किया। उसने एक नया शाही शहर बसाया जो उसका था। यह वह शहर था जिसे उन्होंने अक्कड़ या अगाड़े नाम दिया था, और अगाड़े उनका शहर था जो बिल्कुल नया बनाया गया था। यह बिल्कुल वही है जो डेविड राजा बनने पर करने का इरादा रखता है। उसका पहला कार्य यरूशलेम को अपने उभरते साम्राज्य की राजधानी बनाने के लिए कब्जा करना है। तो यह नया राजधानी शहर पवित्र शहर के रूप में किश का स्थान लेगा। इस पूरे विशाल साम्राज्य का नया शक्ति केंद्र अब किश और सुमेर नहीं है, बल्कि मध्य मेसोपोटामिया में अक्कड़ है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं आपको मानचित्र पर वह उबड़ खाबड़ इलाका दिखा सकता हूँ जहाँ अक्कड़ है। इसलिए यदि आप नहीं बता सकते हैं तो यह बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन यही यह क्षेत्र मेसोपोटामिया का वह क्षेत्र है जहां टाइग्रिस और यूफ्रेट्स एक साथ सबसे करीब आते हैं। ठीक है, और हम ठीक ठीक नहीं जानते कि अक्कड़ कहां था, लेकिन यह इसी आसपास कहीं था जहां दोनों नदियां एक दूसरे के सबसे करीब आती थीं। यह प्राचीन काल के केवल दो शहरों में से एक है, दो शाही शहर जो हमें नहीं मिले हैं। उम्मीद है कि वह दिन आएगा जब हम इसे ढूंढ लेंगे, क्योंकि जब आप शाही शहर ढूंढते हैं तो आपको शाही पुस्तकालय भी मिलता है। जब आप शाही पुस्तकालय ढूंढते हैं तो आपको ऐतिहासिक दस्तावेज मिलते हैं। वह एक शानदार दिन होगा जब वह मिल जाएगा, लेकिन हम नहीं हैं, हम अभी तक वहां नहीं हैं, और यह मुझे इस कक्षा में कवर करने के लिए और भी चीजें देगा। तो मैं बस आगे बढ़ूंगा। उनके नवाचारों में से तीसरा सांस्कृतिक है। उन्होंने अपने शास्त्रियों को क्यूनिफॉर्म लेखन प्रणाली को अपनाने का आदेश दिया, जो इस बिंदु तक सुमेरियन भाषा के लिए थी। उन्होंने सुमेरियन लेखन प्रणाली को थोक में अक्कादियन में रूपांतरित करने का आदेश दिया, और निश्चित रूप से इसका उद्देश्य प्रमुख भाषा के रूप में सुमेरियन को हटाकर अक्कादियन को प्रमुख भाषा बनाना है। इसके बाद सुमेरियन को शायद ही कभी अक्काडियन के साथ आधिकारिक शिलालेखों पर देखा जाता है। केवल दो शताब्दियों में सुमेरियन काफी हद तक एक मृत भाषा बन जाएगी। दूसरे, कला की उच्च गुणवत्ता है। मैं भूल गया कि हर कोई शनिवार की सुबह कार्टून नहीं देखता। यह मेरे छात्रों के लिए सच होगा। इसलिए जब मैं यह सादृश्य बनाने का प्रयास करता हूं, तो उनमें से कुछ इसे समझ नहीं पाते हैं। वर्षों पहले मुझे याद है जब स्मर्फ्स नामक प्यारी छोटी बैंगनी आकृतियों के बारे में एक कार्टून श्रृंखला थी, और यदि आपने कभी स्मर्फ कार्टून देखा तो आपने देखा कि वे 100% हमशक्ल थे। खैर, सुमेरियन भी वैसे ही थे। वे छोटे स्मर्फ्स की तरह दिखते हैं। आप एक सुमेरियन को दूसरे से अलग नहीं कर सकते। वे सभी असली स्क्वाट थे। मेरे विपरीत, आप जानते हैं, मैं 6'4" का हूं। तो मेरे जैसे लंबे व्यक्ति के विपरीत वे सभी छोटे और टेढ़े-मेढ़े थे। वे सभी बाल रहित थे। उनके शरीर पर बाल नहीं थे। उन सभी के पास कोई शीर्ष नहीं था। वे सभी एक ही पोशाक पहने हुए थे। यह घास की परत वाली स्कर्ट थी, और वे सभी हर समय इसी तरह घूमते थे। यह उन्मादपूर्ण था। खैर, दूसरे शब्दों में यह वास्तविक कला नहीं थी, क्योंकि यह आमतौर पर मिट्टी या पत्थर के किसी रूप में बनाई जाती थी। सरगोन ने कला में एक युगांतकारी परिवर्तन शुरू किया, क्योंकि यदि आपने कभी उसकी प्रतिमा देखी है, और आपको बस गूगल पर जाना है, सरगोन अक्कड़ के राजा या कुछ और उसकी शाही प्रतिमा डालें, तो यह कलाकृति के सबसे सुंदर टुकड़ों में से एक है कभी मनुष्यों द्वारा कल्पना की गई। यह बहुत यथार्थवादी है, और यह धातु में है, और उसने वही किया जो उसने कई अन्य चीजों में किया। उन्होंने नाटकीय ढंग से नवप्रवर्तन किया। ठीक है, चौथी चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, और यह तेजी से उस ओर ले जाएगी जहां हम जा रहे हैं, वह है उनका धार्मिक नवाचार। जबकि तीसरी सहस्राब्दी मेसोपोटामिया के प्राचीन शहरों में प्राथमिक आर्थिक इकाई मंदिर थी, अब सरगोन ने मंदिर को आर्थिक रूप से समर्थन देने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। मंदिर अब आर्थिक रूप से स्वतंत्र संस्था नहीं रहा, अब इसे राजा की संपत्ति का पूरा समर्थन प्राप्त था। यह केंद्रीकरण की परिघटना की निरंतरता थी। दूसरे, राजा ने स्वयं को राष्ट्रीय पंथ के केंद्र के रूप में स्थापित किया है। इसलिए नहीं कि राजा कह रहा था कि वह भगवान है, बल्कि इसलिए कि उसने अपनी बेटी को पूरी भूमि पर महायाजक के रूप में नियुक्त किया था। तब राजा ने संक्षेप में अपने आप में धार्मिक शक्ति को उन तरीकों से केंद्रीकृत कर लिया था जो पूरी तरह से अभूतपूर्व थे। अब मैं जल्दी कर रहा हूं, लेकिन जब मैं आपके साथ इस पर पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मैं जो करना चाहता हूं वह कुछ निष्कर्ष निकालना है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत अधिक जानकारी है। यह वास्तव में भ्रमित करने वाला है। मैं जो करना चाहता हूं वह यह है कि एक सहस्राब्दी से जो हो रहा है वह शक्ति का केंद्रीकरण है जो पहले मंदिर में हुआ, और फिर एक सहस्राब्दी के अंतराल में धीरे धीरे एक शहर के राजा में केंद्रित हो गया, अंततः एक राजा में। लुगल ज़गेसी, जिन्होंने राजाओं पर शासन किया, सरगोन तक, जिन्होंने एक साम्राज्य पर शासन किया। सत्ता का केंद्रीकरण एक ऐसी घटना है जो अपरिहार्य भी थी, और शहरी केंद्रों की आवश्यकताओं का प्रत्यक्ष परिणाम भी थी। यह होने वाला था। सवाल यह है कि कब। जब हम बाद में बाइबल के पाठ में उतरेंगे, तो मैं यह सुझाव देने जा रहा हूं कि शक्ति का उसी प्रकार का केंद्रीकरण बाइबल के पन्नों पर होता है। और मुझे आशा है कि मैं आपको यह दिखा सकता हूँ क्योंकि भगवान ने इसराइली राजा के चारों ओर सावधानी पूर्वक बाड़ लगा दी थी, संभवतः इस तरह के शाही केंद्रीकरण को ध्यान में रखते हुए उसे सीमित कर दिया था। जब इसराइली प्रार्थना करें तो अन्य सब जातियों के समान हमें भी एक राजा दे। यह वह प्रोटोटाइप है जो उनके मन में है, कोई ऐसा जो हमें पूरी सुरक्षा देगा, जो हमारी सारी लड़ाई लड़ेगा, कोई ऐसा जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, जब परमेश्वर राजत्व के बारे में सोच रहा होता है तो परमेश्वर के मन में यह बात नहीं होती है। इसलिए मैं आपको जो सुझाव दूंगा वह यह है कि जब से हमने व्याख्यानों की यह श्रृंखला शुरू की है, तब से सारगोन सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसके बारे में हमने बात की है। वह ऐसे राजा हैं जिन्होंने वास्तव में केंद्रीकरण की दिशा तय की। यह एक केंद्रीकरण है जिसके परिणामस्वरूप दैवीकरण होगा, लेकिन फिर वह वापस आ जाएगा और राजत्व में परिणत होगा जो फिर पुराने नियम के बाकी हिस्सों में जारी रहेगा। तो सरगोन के बाद कई अन्य राजा हुए जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन इस राजवंश का अंतिम महान शासक नरमसिन नामक राजा है। वह सचमुच एक दिलचस्प शासक है। मैंने यहाँ आपको उसकी एक तस्वीर दी है, मुझे यकीन नहीं है कि आप इसे देख पाएंगे या नहीं, लेकिन यह नरमसिन का तथाकथित स्टेल है और वह एक पहाड़ पर चढ़ रहा है और पहाड़ की चोटी पर यह तारा है जो देवत्व का प्रतीक है, और वह आपको अपनी कलाकृति में जो बता रहा है वह यह है कि नरमसिन खुद को एक देव राजा घोषित कर रहा है। वह पहले मेसोपोटामिया के राजा थे जिन्होंने खुद को भगवान घोषित किया था। ऐसे कई बिंदु हैं जो इस एपोथेसिस को एक तथ्य बनाते प्रतीत होते हैं। तो उसके राजत्व का प्रमाण क्या है? वे एक हैं ईश्वरीय निर्धारक का उपयोग। अब मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि पहले हमने नदी के बारे में बात की थी, और इसलिए हमारे पास यह क्यूनिफॉर्म चिन्ह था, और यह इस तथ्य पर बनाया गया था कि क्यूनिफॉर्म चिन्ह एक वास्तविक नदी की तरह दिखता था। अब यहाँ एक समस्या है जो पूर्वजों के पास थी। वास्तव में दो नदियां हैं, वहां एक नदी है जिससे वे पानी लाते हैं, जिसमें वे मछलियां पकड़ते हैं, जिसमें वे स्नान करते हैं, लेकिन फिर नदी के देवता भी हैं। ठीक है, यदि आप एक वाक्य लिख रहे हैं और आप नदी के लिए क्यूनिफॉर्म चिन्ह बनाते हैं तो आप अपने दर्शकों को कैसे बताते हैं कि यह देवता है? खैर, आपके सामने आपके क्लास नोट्स पर जो यह चिन्ह है उसे दैवीय निर्धारक कहा जाता है। यह वह संकेत है जो आपको बताता है कि यह भगवान है, और इसका मतलब है कि वह नदी देवता के बारे में बात कर रहा है। वह नदी के देवता के बारे में बात कर रहे हैं, नदी के बारे में नहीं। इसे दैवीय निर्धारक कहा जाता है। यह आपको उस चीज की पहचान के बारे में बताता है जिसके सामने इसे रखा गया है। खैर, नरमसिन वास्तव में दो नाम हैं। यह अक्कादियन शब्द प्रिय है, और मुझे पता है कि यह हमारे शब्द पाप जैसा दिखता है, लेकिन यह पाप शब्द है और यह चंद्र देवता का नाम है। मेसोपोटामिया में चंद्र देवता को सिन चंद्र देवता कहा जाता था। तो नरमसिन के नाम का अर्थ है चंद्रमा देवता का प्रिय पाप। वह चाहता था कि उसके दर्शकों को पता चले कि वह देवता का दावा कर रहा है, इसलिए उसने जो किया वह यह था कि उसने दोनों नामों के आगे दैवीय निर्धारक खींचा था ताकि दर्शक समझ सकें कि वह सिर्फ पाप के कारण नरम पाप नहीं है, वह भगवान नाराम है पाप। इसमें कोई गलती नहीं है कि अपने नाम में दोनों थियोफोरिक तत्वों के सामने इसका उपयोग करके वह देवता होने का दावा कर रहा है। ऐसा करने वाला वह पहला राजा है। दूसरे, वह चारों दिशाओं के राजा की उपाधि धारण करता है। अब अंग्रेजी अनुवाद इसी तरह इसका अनुवाद करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह छात्रों के लिए अजीब है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे केवल एक पैसा मिला है, यानी चार चौथाई। इसका मतलब कंपास के चार बिंदु हैं। यह ब्रह्मांड का राजा कहने का एक प्राचीन तरीका है। दूसरे शब्दों में, जितना दूर पूर्व उतना पश्चिम, उतना दूर उत्तर उतना दूर दक्षिण की ओर जाओ। मैं ब्रह्मांड का राजा हूं। खैर, यह वास्तव में दिलचस्प है क्योंकि यह पहली बार है कि किसी सांसारिक राजा ने अपने लिए ब्रह्मांड के राजा की उपाधि ली है, जो हमेशा देवताओं से संबंधित थी। वह न केवल खुद को ब्रह्मांड का राजा कहता है, बल्कि दिलचस्प बात यह है कि यह भी पहली बार है। वह खुद को इश्तार का पति बताता है। इश्तार मेसोपोटामिया के देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण महिला देवता है। वह स्वयं को ईशर का पति बताने वाला पहला सांसारिक राजा है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं, और बहुत दूर नहीं, मैं यह समझाने की कोशिश करूंगा कि इसका क्या मतलब है। लेकिन एक प्राचीन सुमेरियन धर्म था, वहां साल का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन होता था, पवित्र विवाह। और उस पवित्र विवाह में इश्तार की पुजारिन की शादी अनुष्ठानिक रूप से एक देवता से की जाएगी जिसका नाम दुमुजी था। अब आपको इसमें से कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस शादी में, जिसमें ईशर को याद है कि वह सबसे महत्वपूर्ण महिला देवता है, वह सालाना शादी करती है और हर साल वे दुमुजी, जो एक देवता है, को फिर से निभाते हैं। दुमुजी एक वनस्पति देवता हैं, और इसलिए जाहिर है इस वार्षिक विवाह को जादुई तरीके से ईशर और दुमुजी के यौन मिलन के माध्यम से भूमि के लिए उर्वरता पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह जहां तक हम जा सकते हैं चला गया है। हम यह नहीं जान सकते कि यह कब शुरू हुआ, यह आसपास रहा है। ठीक है, ठीक है, सरगोन ने जो किया वह यह है कि उसने अपनी बेटी को महायाजक घोषित कर दिया और फिर उसने पुरोहित कर्मियों के साथ यौन संबंध बनाए और दुमुजी को एक महत्वपूर्ण मूर्ति के साथ बदल दिया, मुझे कहना चाहिए। और निःसंदेह यह कहा जा रहा है कि बहुत ही कम समय में राजा स्वयं महायाजक का यौन साथी बन जाएगा। फिर पवित्र विवाह राजा और ईशर के इर्द गिर्द घूमेगा। तो इस सब के पीछे अत्यधिक धार्मिक विचार हैं। इश्ताला में तीसरा बिंदु देखना थोड़ा कठिन है। मुझे यकीन नहीं है कि आप कर सकते हैं या नहीं, लेकिन प्राचीन प्रतिमा विज्ञान में यह वह तरीका है जिससे वे आधिकारिक कला में चीजों को चित्रित करते हैं, जब आप यह दिखाना चाहते थे कि कला में एक अस्तित्व है। जैसे आपके पास कलाकृति है, आपके पास नीचे की ओर आकृतियां हैं, आपके पास शीर्ष पर एक आकृति है। प्राचीन दुनिया में दो तरीके थे जिन्हें आप दिखा सकते थे, ठीक है, कम से कम दो तरीकों से कि आप वह आकृति दिखा सकते थे। आप जिसे देख रहे हैं वह कोई देवता है या कोई व्यक्ति है। एक तरीका जिससे आप बता सकते हैं कि यह एक देवता है, यदि आकृति अन्य आकृतियों से बड़ी है। और इसलिए यदि आप आंकड़ों को देखें तो आप देख सकते हैं कि शीर्ष पर स्थित नाराम सिंह चित्र में किसी भी अन्य के आकार का लगभग ढाई गुना है। यह एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे आप बता सकते हैं कि वह स्वयं को एक देवता के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। दूसरी बात यह है, और मुझे यकीन नहीं है कि आप इसे देख सकते हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि उसने वह पहना हुआ है जिसे सींग वाला हेलमेट कहा जाता है। यदि आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि यह कुछ हद तक उन पुराने नॉर्डिक वाइकिंग्स जैसा दिखता है जिनके हेलमेट पर ये सींग होते थे, सिवाय इसके कि यह किसी भी वाइकिंग्स के अस्तित्व से बहुत पहले था। यह लगभग 2300 ईसा पूर्व की बात है। यह देवता का लक्षण है। दूसरे शब्दों में, यदि आप सींग वाले हेलमेट को देख रहे हैं तो जो चीज इसे देवता का प्रमाण बनाती है वह सींग है। देखिए, दूसरे शब्दों में, जब आप देवताओं में देवताओं के विषय क्षेत्र में जितना पीछे जा सकते हैं जाते हैं, तो राजत्व का चिन्ह सींग होता है, क्योंकि उनकी पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली जानवर बैल था और बैल के पास था ये शक्तिशाली सींग, और इसलिए सींग अंततः एक देवता का प्रतीक बन गए। और यह वास्तव में दिलचस्प है, क्योंकि इसी प्रकार का धर्मशास्त्र पुराने नियम में अपना स्थान बना सकता है। उदाहरण के लिए, यह पहला हिब्रू शब्द है जिसे हमने इस सेमेस्टर में सीखा होगा, इसलिए यह एक पवित्र क्षण है। आप कोई हिब्रू नहीं जानते थे और अब आप बहुभाषी होने की राह पर हैं। तो पहला हिब्रू शब्द जो हम सीखने जा रहे हैं वह चारोन या खारोन शब्द है। अब आप इसे देख सकते हैं और कह सकते हैं यह काफी हद तक उस व्यक्तिगत नाम जैसा दिखता है जिसे हम जानते हैं, जैसे कि एक लड़की का नाम करें, करें, और आप सही होंगे। कैरन एक उधार शब्द है, तो मैं इसे अभी लगाऊंगा। तो चारोन, कैरन हिब्रू से अंग्रेजी में लिया गया एक उधार शब्द है। हिब्रू शब्द चारोन का अर्थ सींग या मुकुट है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि व्यंजन वही हैं। हमारे शब्द क्राउन को देखें और फिर चारोन शब्द को देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं व्यंजन समान हैं। सी और के, दो आर, दो एन। तो अंग्रेजी में हमारा शब्द क्राउन हिब्रू से उधार लिया गया शब्द है, और वह मुकुट अपने प्रारंभिक स्वरूप में उस प्रकार के मुकुट जैसा नहीं है जिसके बारे में हम सोचते हैं। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं इंग्लैंड के राजा के बारे में जो सोचता हूँ वह शायद इसलिए है क्योंकि वह एकमात्र राजा है जिसे मैं जानता हूँ जिसका मैंने ताज देखा है। लेकिन उनके पास एक सुनहरा मुकुट है जो गोलाकार है, और फिर इसमें सोने की लहरें हैं जो इसे बहुत अलंकृत बनाती हैं। लेकिन प्राचीन काल में शुरुआती मुकुट सिर्फ सींग वाले होते थे, सही, और इसलिए उसने सींग का मुकुट पहना हुआ है, जिसका अर्थ है कि मुकुट का अर्थ है उसका देवता, ठीक है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हिब्रू भाषा में भी यही मुहावरा है, क्योंकि हिब्रू में क्राउन शब्द चारोन का मतलब सींग या मुकुट हो सकता है। यह बस आश्चर्यजनक है कि यह उसी मुहावरे को याद रखता है या संरक्षित करता है कि सींग एक मुकुट के बराबर होता है, एक मुकुट एक सींग के बराबर होता है। मुझे याद है जब मैं ईसाई बना था, मैं बिल्कुल नया था, हाई स्कूल से स्नातक होने में सिर्फ 3 महीने बचे थे। मुझे भजन पढ़ना याद है, और मुझे याद है भजन कहता है तू मेरे सींग का तेल से अभिषेक करता है, और मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि मैंने सोचा था यह कितना विचित्र है, क्योंकि मेरे मन में एक सींग की यह तस्वीर थी, और मैंने सोचा आखिर आप सींग पर तेल क्यों लगाना चाहेंगे, क्योंकि वह काम नहीं करेगा, इससे हार्न के काम करने में बाधा उत्पन्न होगी। खैर, निःसंदेह ऐसा इसलिए है क्योंकि किंग जेम्स अनुवादकों ने इसका अनुवाद हॉर्न के रूप में करना चुना, लेकिन यह अंग्रेजी में क्राउन से अलग शब्द है, इसलिए हम हॉर्न शब्द का उपयोग क्राउन के रूप में नहीं करते हैं, भले ही मुझे संदेह है कि हॉर्न और क्राउन शब्द एक ही हैं। अक्षर एच और अक्षर एच सभी एक ही अक्षर हैं। दूसरे शब्दों में, जर्मन में आपको याद होगा कि जर्मन में एच ध्वनि एच हो सकती है, और इसलिए मुझे संदेह है कि हॉर्न, हॉर्न, क्राउन और कैरन सभी एक ही शब्द हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वह जो कर रहा है वह यह बताने के लिए कि वह देवता है, सींग वाला मुकुट पहन रहा है। अब इस बिंदु तक यह सब थोड़ा गूढ़ है, लेकिन जैसे जैसे हम इस चर्चा की ओर बढ़ते हैं इसमें रुचि की रूपरेखा बनने लगती है। यह उचित ही पूछा जा सकता है कि एक राजा ने स्वयं को दैवीय क्यों बनाया होगा, ठीक है। निश्चित रूप से ऐसे धार्मिक विकास हुए होंगे जिन्होंने ऐसी घटनाओं को संभव या आवश्यक बना दिया। प्रश्न का उत्तर अधिक से अधिक सैद्धांतिक है। तो हम आपसे इस बात पर विचार करने के लिए कह रहे हैं कि यह देवताओं के लिए आरक्षित चीज मुकुट से कैसे हुआ। आखिरकार याद रखें, प्रारंभिक सुमेरियन शहरों में राजा ही मंदिर का देवता होता था। तो ऐसा कैसे हुआ कि यह देवता के राजा होने से एक सांसारिक राजा के देवता होने तक चला गया? ऐसी उपाधियों से जिनका उपयोग राजा के अलावा किसी और चीज के लिए कभी नहीं किया गया था, उन उपाधियों से लेकर एक सांसारिक देवता के लिए उपयोग की जाने वाली उपाधियां कैसे आईं? और ऐसा कैसे हुआ कि यौन मिलन, जिसे पवित्र विवाह कहा जाता है, दो शाही व्यक्तियों इश्तार और डुमरी से राजा और इश्तार तक चला गया? हमारी संस्कृति, समाजशास्त्र और धर्म में एक नाटकीय बदलाव आया है और हमें खुद से पूछना होगा, हमें खुद से सवाल पूछने की जरूरत है, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? और हम आपको किस बारे में बता सकते हैं, क्योंकि हम इस व्याख्यान के अंत के करीब पहुंच रहे हैं। हम आपको जो बता सकते हैं वह यह है कि पूर्वजों के लिए धर्मशास्त्र हमेशा उनके विश्व दृष्टिकोण का केंद्र था, इसलिए वे किसी दार्शनिक बदलाव में संलग्न नहीं थे। नाटकीय धार्मिक नतीजों के कारण वे इस बदलाव में शामिल हो रहे थे। हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं क्योंकि एक बार फिर जिन चीजों की हम तलाश कर रहे हैं उनमें से एक यह है कि बाइबल राजत्व के इस बेहद महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र के बारे में क्या बात करती है, इसकी स्पष्ट तस्वीर पेश करना है। इससे पहले कि मैं इस व्याख्यान का टेप बंद करूं, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। यह हमारे लिए इतना अजीब है कि हम में से अधिकांश लोग अपने प्रभु यीशु को राजा के रूप में नहीं सोचते हैं, भले ही नए नियम में उन्हें बार बार राजा के रूप में चित्रित किया गया हो, और कम से कम कई लोगों ने उसके बारे में ऐसा ही सोचा था, क्योंकि जब पीलातुस ने उसे क्रूस के ऊपर क्रूस पर चढ़ाया था तो वह यहूदियों का राजा था। इसलिए यदि हम ईश्वर और हमारे प्रभु दोनों को समझना चाहते हैं, साथ ही पुराने नियम के रिकॉर्ड में राजत्व के बारे में परस्पर विरोधी साक्ष्यों को समझना चाहते हैं, तो हमें राजत्व के इस शक्तिशाली रूपक के साथ फिर से जुड़ने की आवश्यकता है। तो यह महान बदलाव यही होता है। हम इसे अगले व्याख्यान में राजाओं के पूर्ण दिव्यीकरण के साथ उठाएंगे। ठीक है, आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। यह पुराने नियम की पृष्ठभूमि पर अपने शिक्षण में डॉक्टर डॉन फाउलर हैं। यह सत्र 4 है, राजाओं का दैवीकरण।